दिन जैसे पलक झपकते ही बीत गए थे। अक्षय और आहाना दोनों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। शादी की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा था। घर मेहमानों से भर चुके थे। एक तरफ अक्षय था जो बेहद खुश व एक्साइटेड था और बड़ी ही बेसब्री से शादी के दिन का इंतजार कर रहा था, तो दूसरी तरफ आहाना की स्थिति जरा गंभीर थी। जैसे जैसे शादी की घड़ी नज़दीक आ रही थी, उसकी घबराहट बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और स्थिति ऐसी कि अपने मन की उलझन कश्मकश को किसी से साझा भी नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत अभी ऐसी थी कि अक्षय का ख्याल मन को गुदगुदा जाता, उससे विवाह के अटूट बंधन में बंधने का सोचकर दिल अनूठी अनुभूतियों से भर जाता, पर अपने घर परिवार से दूर जाने का ख्याल, एक अनजान जगह अनजान लोगों के बीच जाने का सोचकर दिल में टीस सी उठती, मन उदास और बेचैन हो जाता। शायद शादी से पहले हर लड़की उन्हीं उलझनों में उलझी होती है, जहां हमसफर का ख्याल उसके मन को गुदगुदाता है, आने वाले कल के मीठे सपने उसकी आंखों में सजते हैं, तो वहीं अपने घर परिवार के छूटने का दुख मन को तड़पा जाता है, दिल दुखता है और अनजान लोगों के बीच जाने का सोचकर घबराहट बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आहाना अभी खुशी, गम, घबराहट, बेचैनी जैसे मिश्रित भावों को महसूस कर रही थी। दोपहर का वक्त था। लंच के बाद सभी मेहमान रिश्तेदार आराम फरमाने गए थे। आंगन में इस वक्त आहाना और जयंती जी बैठी थीं। जयंती जी आहाना के खुले बालों में तेल लगा रही थीं और आहाना दिल में भावनाओं के ज्वार को कैद किए खामोशी से बैठकर अपनी माँ के इस ममता भरे स्पर्श को अपने दिल में बसा रही थी। माँ, क्या शादी के बाद भी आप हमारा ऐसे ही ख्याल रखेंगी, इतनी ही मोहब्बत करेंगी हमसे और यूं ही अपना ममता भरा हाथ हमारे सर पर बनाए रखेंगी? आहाना सर घुमाए बड़ी ही उम्मीद से उन्हें देख रही थी। दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था और अपनी माँ से दूर जाने के ख्याल मात्र से उसकी पलकें भीग गई थीं। उसकी नम आंखों से किए इस सवाल को सुनकर जयंती जी तड़प उठी। ये सवाल क्यों बेटा? हम आपकी शादी कर रहे हैं। मानते हैं दिल पर पत्थर रखकर हम अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर भेजने वाले हैं, पर आप बेटी हैं हमारी और हम आपकी माँ हैं। हमने अपने खून से सींचा है आपको, बहुत प्यार से पाला है आपको। कन्यादान भले ही करेंगे आपका, पर आपको खुद से पराया नहीं करेंगे। नए रिश्ते जुड़ेंगे पर पुराने बंधन टूटेंगे नहीं। आप हमारी बेटी हैं और हमेशा रहेंगी। आप हमारे साथ रहें या हमसे दूर, हम हमेशा आपसे इतनी ही मोहब्बत करेंगे। हमारे प्यार, दुलार और ममता पर हमेशा आपका उतना ही हक रहेगा जितना दृशांत, निशांत और अंतरा का होगा। बस तब हमें ऐसे अवसर कम मिलेंगे जब हम अपनी बिटिया को अपने पास बिठाकर उनसे बात कर सकें, उन्हें अपनी ममता भरे आंचल में समाकर दुलार कर सकें। पर इससे आपकी माँ का आपके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा, इसलिए ये ख्याल कभी अपने मन में मत लाना। आहाना ने सर हिलाया और उंधे स्वर में आगे बोली, माँ, वहाँ कौन हमारा ऐसे ख्याल रखेगा? कौन हमारे नाज नखरे उठाएगा? कौन सुबह हमें प्यार से जगाएगा? कौन हमारी पसंद का खाना बनाकर हमें अपने हाथों से खिलाएगा? कौन हमें यूं दुलार करेगा? कौन हमारी सहेली बनकर हमारे दिल की बातें सुनेगा? कौन हमें इतना प्यार करेगा? ऐसे ही बहुत से सवाल किए थे उसने, जिसे सुनकर जयंती जी का दिल तड़प उठा था। आहाना के सवालों के पहले तो कोई जवाब नहीं सूझे उन्हें। कुछ पल भीगी निगाहों से खामोशी से उसे तकती रहीं, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, वहां हम नहीं होंगे बेटा, दामाद जी होंगे, वो परिवार होगा, पर माँ सा ख्याल दुनिया में कोई दूसरा नहीं रख सकता। कहते हैं ससुराल कितना ही भला हो, पर मायका मायका ही रहता है। वहां के लोगों से इस प्यार की उम्मीद रखना गलत होगा, इसलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। आप इस घर की बेटी हैं, पर उस घर की बहू होंगी। जैसे हम आप सबका ख्याल रखते हैं, वहां जाकर आपको उस परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना होगा, उन्हें प्यार व अपनापन देना होगा, उन रिश्तों को दिल से निभाना होगा, एक अच्छी बहू, बीवी, भाभी बनना होगा। बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी आपके सर पर और आपको उन्हें निभाना होगा, पर ये आपका मायका है। आप जब जब यहाँ आएंगी, आपको हम सबका प्यार मिलेगा। आपकी माँ आपका ख्याल रखेंगी। आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाकर हम अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। बैठकर अपनी बेटी के दिल की हर बात सुनेंगे। फिर अभी तो आपको बस कुछ दिनों के लिए ही दिल्ली जाना है। उसके बाद आप वापस अपनी माँ के पास आ जाएंगी और हम आपसे फोन पर बात किया करेंगे। जाने वो आहाना को सांत्वना दे रही थी या खुद को ढांढस बंधा रही थी। आहाना पल भर भीगी निगाहों से उन्हें देखती रही, फिर उठकर उनसे लिपट गई। खामोशी से उसकी आंखों से नीर बहने लगे। जयंती की आंखें भी भीग गईं। मन व्यथित हो उठा। आखिर माँ थी वो, अपनी बेटी को दर्द में देखकर वो कैसे व्याकुल ना होती। पीड़ा में तो वो भी थी, आखिर अपनी बेटी से बिछुड़ने का गम तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और इस गम पर एक डर भी हावी था
कि जाने आहाना की किस्मत में क्या लिखा है और ससुराल में उसका जीवन कैसा होगा। इस डर की वजह थी रूपाली जी। अपनी बेटी के सुखी भविष्य के लिए एक माँ का चिंतित होना स्वाभाविक था, पर वो प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। बस एक उम्मीद थी कि आगे भी सब अच्छा ही होगा और ये रिश्ता आहाना की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। शाम का वक्त था। गुमसुम उदास आहाना को अंतरा, पल्लवी और उनकी बाकी बहनें भाभियां घेर कर बैठी थी। वो सब तो आपस में बतियाते हुए, हंसी मजाक करते हुए आहाना के कपड़े देख रही थी, पर आहाना का मन अब भी जयंती जी की बातों में उलझा हुआ था। बातों बातों में अक्षय का जिक्र छिड़ा तो आहाना का ध्यान भी उस ओर चला गया। सब अक्षय की तारीफ कर रहे थे, आहाना की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। आहाना के चेहरे पर छाए गम के बादल अब छटने लगे थे और दिल एक बार फिर अक्षय से जुड़े मीठे मीठे एहसासों से भरने लगा था। उनकी बातों में विघ्न पड़ा जब अचानक ही आहाना का फोन बज उठा। आहाना ने झट से टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर पड़ते ही अक्षय की तारीफ में सबकी कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी। लबों पर मीठी सी मुस्कान बिखर गई। किसका फोन है अनु? भाभी ने आहाना को फोन को देखते हुए खुद में मुस्कुराते देखकर सवाल किया, जिसे सुनकर आहाना ने सक पकाते हुए उन्हें देखा और हड़बड़ी में इनकार में सर हिला दिया। किसी का नहीं। भाभी के साथ साथ अब बाकी सब भी गहरी निगाहों से आहाना को देखने लगी, जिससे आहाना घबरा गई और निगाहें चुराते हुए बोली, कंपनी से फोन है। झूठ न बोलो अनु, तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग कुछ और ही बता रहा है। कहीं तुम्हारे पियाजी तो तुम्हें याद नहीं कर रहे? पल्लवी ने जानकर आहाना को छेड़ा और उसकी बात का आहाना पर गहरा असर भी हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसने गड़बड़ाते हुए इनकार में सर हिला दिया, नहीं तो वो क्यों हमें फोन करेंगे।